हिंद युग द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला प्रेमचंद की कालजयी रचनाएं में आपका स्वागत है। सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार। आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है पर्वत यात्रा। यह रचना सन 1929 में अप्रैल महीने में माधुरी में प्रकाशित हुई थी।
कविता, कहानी, बाल रचना, गीत संगीत सुनने के लिए लॉग ऑन करें hindyugma.com।
प्रातःकाल मोहम्मद गुलाब आजखां ने नमाज पढ़ी, कपड़े पहने और महरी से किराए की गाड़ी लाने को कहा। श्री बेगम ने पूछा, आज सवेरे सवेरे कहाँ जाने का इरादा है? जरा छोटे साहब को सलाम करने जाना है। तो पैदल क्यों नहीं चले जाते? कौन बड़ी दूर है? जो बात तुम्हारी समझ में ना आए उसमें जबान ना खोला करो। पूछती तो हूँ, पैदल चले जाने में क्या हर्ज है? गाड़ी वाला 1 रुपए से कम ना लेगा। हा हा, हुक्काम किराया नहीं देते, उसकी हिम्मत है कि मुझसे किराया मांगे? चालान करवा दूंगा। तुम तो हाकिम भी नहीं हो, तुम्हें वो क्यों ले जाने लगा? हाकिम कैसे नहीं हूँ? हाकिम के क्या सींग पूछ होती है जो मेरे नहीं है? हाकिम का दोस्त हाकिम से कम रौब नहीं रखता। अहमक नहीं हूँ कि 100 काम छोड़कर हुक्काम की सलामी बजाया करता हूँ। ये इसी की बरकत है कि पुलिस माल दीवानी के अहलकार मुझे झुक झुक कर सलाम करते हैं। थानेदार ने कल जो सौगात भेजी थी वो किस लिए? मैं उनका दामाद तो नहीं हूँ, सब मुझसे डरते हैं। इतने में महरी एक तांगा लाई। खां साहब ने फौरन साफा बांधा और चले। शीरी ने कहा, अरे पान तो खाते जाओ। हाँ लाओ, अब हाथों में मेहंदी भी लगा दो। अरे नेक बख्त, हुक्काम के सामने पान खाकर जाना बेअद भी है। आओगे कब तक? खाना तो यहीं खाओगे? तुम मेरे खाने की फिक्र ना करना, शायद कुंवर साहब के यहाँ चला जाऊं। कोई मुझे पूछे तो कहला देना, बड़े साहब से मिलने गए हैं। खां साहब आकर तांगे पर बैठे। तांगे वाले ने पूछा, हुजूर कहाँ चलूं? छोटे साहब के बंगले पर सरकारी काम से जाना है। हुजूर को वहां कितनी देर लगेगी? वो मैं कैसे बता दूं? ये तो हो ही नहीं सकता कि साहब मुझसे बार बार बैठने को कहें और मैं उठकर चलाऊं। सरकारी काम है, न जाने कितनी देर लगे। बड़े अच्छे आदमी हैं बेचारे, मजाल नहीं कि जो बात कह दूं उससे इनकार कर दें। आदमी को गरूर न करना चाहिए, गरूर करना शैतान का काम है। मगर कई थानेदारों से जवाब तलब कर चुका हूं। जिसको देखा कि रियाया को ईजा पहुंचाता है उसके पीछे पड़ जाता हूं। हुजूर पुलिस बड़ा अंधेर करती है, जब देखो बेगार, कभी आधी रात को बुला भेजा, कभी फाजिर को, मरे जाते हैं हुजूर। उस पर हर मोड़ पर सिपाहियों को पैसे चाहिए, ना दे तो झूठा चालान कर दे। सब जानता हूँ जी, अपनी झोपड़ी में बैठा सारी दुनिया की सैर किया करता हूँ, वहीं बैठे बैठे बदमाशों की खबर लिया करता हूँ। देखो तांगे को बंगले के भीतर ना ले जाना, बाहर फाटक पर रोक देना। अच्छा हुजूर। अच्छा अब देखिए, वो सिपाही मोड़ पर खड़ा है, पैसे के लिए हाथ फैलाएगा, ना दूं तो ललकारेगा। मगर आज कसम कुरान की, टका सा जवाब दे दूंगा। हुजूर बैठे हैं तो क्या कर सकता है? नहीं नहीं, जरा जरा सी बात पर मैं इन छोटे आदमियों से नहीं लड़ता, पैसे दे देना। मैं तो पीछे से बच्चों की खबर लूंगा, मुअत्तल ना करा दूं तो सही। दू बदू गाली गलौज करना, इन छोटे आदमियों के मुंह लगना मेरी आदत नहीं है। तांगे वाले को भी ये बात पसंद आई, मोड़ पर उसने सिपाही को पैसे दे दिए। तांगा साहब के बंगले पर पहुंचा। खां साहब उतरे और जिस तरह कोई शिकारी पैर दबा दबा कर चौकन्नी आंखों से देखता हुआ चलता है, उसी तरह आप बंगले के बरामदे में जाकर खड़े हो गए। बैरा बरामदे में बैठा था, आपने उसे देखते ही सलाम किया। बैरा, हुजूर तो अंधेर करते हैं, सलाम हमको करना चाहिए और आप पहले ही हाथ उठा देते हैं। अजी इन बातों में क्या रखा है, खुदा की निगाह में सब इंसान बराबर हैं। हुजूर को अल्लाह सलामत रखे, क्या बात कही है। हक तो ये है पर आदमी अपने को कितना भूल जाता है। यहाँ तो छोटे छोटे अमले भी इंतजार करते रहते हैं कि ये हाथ उठाए। साहब को इतला कर दूं? आराम से हो तो रहने दो, अभी ऐसी कोई जल्दी नहीं। जी नहीं हुजूर, हाजिरी पर से तो कभी के उठ चुके, कागज वागज पढ़ते होंगे। अब इसका तुम्हें अख्तियार है, जैसा मौका हो वैसा करो। मौका महल पहचानना तुम्ही लोगों का काम है। क्या हुआ, तुम्हारी लाडली खैरियत से तो है ना? हाँ हुजूर, अब बहुत मजे में है। जब से हुजूर ने उसके घर वालों को बुलाकर डांट दिया है, तब से किसी ने चूं भी नहीं किया। लड़की हुजूर की जानमाल को दुआ देती है। बैरे ने साहब को खां साहब की इत्तला की और एक क्षण में खां साहब जूते उतार कर साहब के सामने खड़े हुए और सलाम करके फर्श पर बैठ गए। साहब का नाम कॉटन था, कॉटन साहब।
ओ, ये आप क्या करता है? कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए।
नहीं नहीं, आप हमारा दोस्त है। हुजूर चाहे मेरे को आफताब बना दे, पर मैं तो अपनी हकीकत समझता हूँ। बंदा उन लोगों में नहीं है जो हुजूर के करम से चार हरफ पढ़कर जमीन पर पाँव नहीं रखते और हुजूर लोगों की बराबरी करने लगते हैं।
खान साहब, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। हम आज के पांचवें दिन नैनीताल जा रहा है, वहाँ से लौट कर आपसे मुलाकात करेगा। आप तो कई बार नैनीताल गया होगा, अब तो सब रईस लोग वहाँ जाता है।
खां साहब नैनीताल क्या, बरेली तक भी ना गए थे, पर इस समय कैसे कह देते कि मैं वहाँ कभी नहीं गया। साहब की नजरों से गिर ना जाते। साहब समझते कि ये रईस नहीं, कोई चरकटा है। बोले,
हाँ हुजूर, कई बार हो आया हूँ।
आप कई बार हो आया है, हम तो पहली दफा जाता है। सुना बहुत अच्छा शहर है।
बहुत बड़ा शहर है हुजूर, मगर कुछ ऐसा बड़ा भी नहीं है।
आप कहाँ ठहरता है? वहाँ होटलों में बहुत पैसा लगता है।
मेरी हुजूर ना पूछे, कभी कहीं ठहर गया, कभी कहीं ठहर गया।
हुजूर के अकबाल से सभी जगह दोस्त हैं।
आप वहाँ किसी के नाम चिट्ठी दे सकता है कि मेरे ठहरने का बंदोबस्त कर दें, हम किफायत से काम करना चाहता है। आप तो हर साल जाता है, हमारे साथ क्यों नहीं चलता?
खां साहब बड़ी मुश्किल में फंसे। अब बचाव का कोई उपाय न था, कहना पड़ा।
जैसा कहें, हुजूर के साथ ही चला चलूंगा, मगर मुझे अभी जरा देर है हुजूर।
और कुछ परवाह नहीं, हम आपके लिए एक हफ्ता ठहर सकता है। अच्छा सलाम, आज ही आप अपने दोस्त को जगह का इंतजाम करने को लिख दें। आज के सातवें दिन हम और आप साथ चलेगा, हम आपको रेलवे स्टेशन पर मिलेगा।
खां साहब ने सलाम किया और बाहर निकले। तांगे वाले से कहा, कुंवर शमशेर सिंह की कोठी पर चलो। कुंवर शमशेर सिंह खानदानी रईस थे, उन्हें अभी तक अंग्रेजी रहन सहन की कवा न लगी थी। 10 बजे तक सोना, फिर दोस्तों और मुसाहिबों के साथ गपशप करना, 2 बजे खाना खाकर फिर सोना, शाम को चौक की हवा खाना और घर आकर 12-1 बजे तक किसी परी का मुजरा देखना, यही उनकी दिनचर्या थी। दुनिया में क्या होता है, इसकी उन्हें कुछ खबर न थी, या थी भी तो सुनी सुनाई। खां साहब उनके दोस्तों में से थे। जिस वक्त खां साहब कोठी में पहुंचे, 10 बज गए थे। कुंवर साहब बाहर निकल आए थे, मित्रगण जमा थे। खां साहब को देखते ही कुंवर साहब ने पूछा, कहिए खां साहब किधर से?
जरा साहब से मिलने गया था, कई दिन बुला बुला भेजा, मगर फुर्सत ही न मिलती थी। आज उनका आदमी जबरदस्ती खींच ले गया, क्या करता, जाना ही पड़ा। कहां तक बेरुखी करूं यार, तुम ना जाने अफसरों पर क्या जादू कर देते हो, जो आता है तुम्हारा दम भरने लगता है। मुझे वो मंत्र क्यों नहीं सिखा देते?
मुझे खुद ही नहीं मालूम कि क्यों हुक्काम मुझ पर इतने मेहरबान रहते हैं। आपको यकीन ना आवेगा, मेरी आवाज सुनते ही कमरे के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और ले जाकर अपनी खास कुर्सी पर बिठा दिया।
अपनी खास कुर्सी पर?
हाँ साहब, हैरत में आ गया, मगर बैठना ही पड़ा। फिर सिगार मंगवाया, इलायची, मेवे, चाय, सभी कुछ आ गए। यूं कहिए कि खासी दावत हो गई, ये मेहमानदारी देखकर मैं दंग रह गया।
तो वो सब दोस्ती भी करना जानते हैं?
अजी दूसरा क्या खा के दोस्ती करेगा, अब हद हो गई कि मुझे अपने साथ नैनीताल चलने को मजबूर किया।
सच?
कसम कुरान की। हैरान था कि क्या जवाब दूं, मगर जब देखा कि किसी तरह नहीं मानते तो वादा करना ही पड़ा। आज ही के दिन कूच है।
क्यों यार, मैं भी चला चलूं तो क्या हर्ज है?
सुभान अल्लाह, इससे बढ़कर क्या बात होगी।
भाई लोग तरह तरह की बातें करते हैं, इससे जाते डर लगता है।
आप तो हो आए होंगे?
कई बार हो आया हूँ।
हाँ, इधर कई साल से नहीं गया।
क्यों साहब, पहाड़ों पर चलते चलते दम फूल जाता होगा?
धर्मावतार, चढ़ने को तो किसी तरह चढ़ भी जाइए, पर पहाड़ों का पानी ऐसा खराब होता है कि एक बार लग गया तो प्राण ही लेकर छोड़ता है।
बद्रीनाथ की यात्रा करने जितने यात्री जाते हैं उनमें से बहुत कम जीते लौटते हैं और संग्रहणी तो प्रायः सभी को हो ही जाती है। हाँ सुना तो हमने भी है कि पहाड़ों का पानी बहुत लगता है। गोसाई जी ने भी पहाड़ के पानी की निंदा की है, लागत अति पहाड़ का पानी बड़ दुख होत न जाए बखानी। तो ये इतने अंग्रेज वहां क्यों जाते हैं साहब, ये लोग अपने वक्त के लुकमान हैं, इनका कोई काम मसलहत से खाली नहीं होता। पहाड़ों की सैर से कोई फायदा ना होता तो क्यों जाते, जरा ये तो सोचिए। यही सोच सोच कर तो हमारे रईस अपना सर्वनाश कर रहे हैं। उनकी देखा देखी धन का नाश, धर्म का नाश, बल का नाश होता चला जाता है, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती। मेरे पिताजी एक बार किसी अंग्रेज के साथ पहाड़ पर गए थे, वहां से लौटे तो मुझे नसीहत की कि खबरदार कभी पहाड़ पर ना जाना। आखिर कोई बात तो देखी होगी जबी तो ये नसीहत की। हुजूर खान साहब जाते हैं, जाने दीजिए, आपको मैं जाने की सलाह ना दूंगा। जरा सोचिए, कोसों की चढ़ाई, फिर रास्ता इतना खतरनाक कि खुदा की पनाह, जरा सी पगडंडी, दोनों तरफ कोसों का खड्ड। नीचे देखा और थरथराकर आदमी गिर पड़ा, और जो कहीं पत्थरों में आग लग गई तो चलिए वारा न्यारा हो गया, जल भुन के कबाब हो गया। और जो लाखों लोग पहाड़ पर रहते हैं वो, उनकी और बात है भाई साहब। और बात कैसी, क्या वे आदमी नहीं है? लाखों आदमी दिन भर हल जोतते हैं, फावड़े चलाते हैं, लकड़ी फाड़ते हैं, आप करेंगे? है आप में इतनी दम? हुजूर उस चढ़ाई पर चढ़ सकते हैं? क्यों नहीं, टट्टुओं पर जाएंगे? टट्टुओं पर छेकोस की चढ़ाई, होश की दवा कीजिए। कुंवर साहब ने कहा, टट्टुओं पर भाई हमसे न जाया जाएगा, कहीं टट्टू भड़के तो कहीं के ना रहे, गिरे तो हड्डियां तक ना मिले, प्राण तक चूर चूर हो जाए। खुदावन, एक जरा सी ऊंचाई पर से आदमी देखता है तो कांपने लगता है, ना कि पहाड़ की चढ़ाई। कुंवर, वहां सड़कों पर इधर उधर ईंट या पत्थर की मुंडेर नहीं बनी हुई है? खुदाबंद, मंजिलों के रास्ते में मुंडेरे कैसी, आदमी का काम तो नहीं है। सुना वहां घेघा निकल आता है? अरे भाई ये तो बहुत बुरा रोग है, तब मैं वहां जाने का नाम भी ना लूंगा। आप लाल साहब से पूछें कि साहब लोग जो वहां रहते हैं उनको घेगा क्यों नहीं आता? वो लोग ब्रांडी पीते हैं, हम और आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते भला। फिर उनका अकबाल, मुझे तो यकीन नहीं आता कि खां साहब कभी नैनीताल गए, इस वक्त डींग मार रहे हैं। क्यों साहब, आप कितने दिन वहां रहे? कोई 4 बरस तक रहा था। वहां किस मोहल्ले में रहते थे? जी मैं। आखिर आप 4 बरस तक कहां रहे? देखिए याद आ जाए तो कहूं। जाइए भी, नैनीताल की सूरत तक तो देखी नहीं, गप फांक दी कि वहां 4 बरस तक रहे। अच्छा साहब, आप ही का कहना सही, मैं कभी नैनीताल नहीं गया, बस अब तो आप खुश हैं? आखिर आप क्यों नहीं बताते कि नैनीताल में आप कहां ठहरे थे? कभी गए हो तब ना बताएं? कह तो दिया कि मैं नहीं गया, चलिए छुट्टी हुई। अब आप फरमाइए कुंवर साहब, आपको चलना है या नहीं? ये लोग जो कहते हैं सब ठीक है, वहां घेगा निकल आता है, वहां का पानी खराब है, खाना बिल्कुल हजम नहीं होता, वहां हर रोज 10-5 आदमी खड्ड में गिरा करते हैं। अब आप क्या फैसला करते हैं? वहां जो मजे हैं वो यहां ख्वाब में भी नहीं मिल सकते। जिन हुक्काम के दरवाजे पर घंटों खड़े रहने पर भी मुलाकात नहीं होती, उनसे वहां 24 घंटे का साथ रहेगा। मिसों के साथ झील में सैर करने का मजा अगर मिल सकता है तो वही। अजी सैकड़ों अंग्रेजों से दोस्ती हो जाएगी, 3 महीने वहां रहकर आप इतना नाम हासिल कर सकते हैं जितना यहाँ जिंदगी भर भी ना होगा, बस और क्या कहूं। वहां बड़े बड़े अंग्रेजों से मुलाकात हो जाएगी। जनाब दावतों के मारे आपको दम मारने की मोहलत भी ना मिलेगी। जी तो चाहता है कि एक बार देख ही आए, तो बस तैयारी कर लीजिए। सभाजन ने जब देखा कि कुंवर साहब नैनीताल जाने के लिए तैयार हो गए तो सबके सभा में हाँ मिलाने लगे। पर्वत कंदराओं में कभी कभी योगियों के दर्शन हो जाते हैं। हाँ सुना है 200-200 साल के योगी वहां मिलते हैं, जिसकी ओर एक बार आंख उठाकर देख लिया उसे चारों पदार्थ मिल गए। मगर हुजूर, चलें तो इस छाट से चलें कि वहां के लोग भी कहें कि लखनऊ के कोई रईस आए हैं। लक्ष्मी हथिनी को जरूर ले चलिए,
वहाँ कभी किसी ने हाथी की सूरत काहे को देखी होगी। जब सरकार सवार होकर निकलेंगे और गंगा जमुनी हौदा चमकेगा तो लोग दंग रह जाएंगे। एक डंका भी हो तो क्या पूछना। नहीं साहब, मेरी सलाह डंके की नहीं है, देश देख कर भेष बनाना चाहिए। हाँ, डंके की सलाह तो मेरी भी नहीं है, पर हाथी के गले में घंटा जरूर हो। जब तक वहां किसी दोस्त को तार दे दीजिए कि एक पूरा बंगला ठीक कर रखे, छोटे साहब को भी उसी में ठहरा लेंगे। वो हमारे साथ क्यों ठहरने लगे, अफसर हैं, उनको लाने का जिम्मा हमारा, खींच खांच कर किसी ना किसी तरह ले ही आऊंगा। अगर उनके साथ ठहरने का मौका मिले तब तो मैं समझूं नैनीताल का जाना पारस हो गया। एक हफ्ता गुजर गया, सफर की तैयारियां हो गई। प्रातःकाल कॉटन साहब का खत आया कि आप हमारे यहां आएंगे या मुझसे स्टेशन पर मिलेंगे। कौर साहब ने जवाब लिखवाया कि आप इधर ही आ जाइए, स्टेशन का रास्ता इसी तरफ से है, मैं तैयार रहूंगा। वो खत लिखवा कर कुंवर साहब अंदर गए तो देखा कि उनकी बड़ी साली रामेश्वरी देवी बैठी हुई हैं। उन्हें देखकर बोली, क्या आप सचमुच नैनीताल जा रहे हैं? कुंवर, जी हाँ, आज रात की तैयारी है। रामेश्वरी, अरे आज ही रात को? ये नहीं हो सकता, कल बच्चे का मुंडन है, मैं एक ना मानूंगी। आप ही ना होगे तो लोग आकर क्या करेंगे? कुंवर, तो आपने पहले ही क्यों ना कहला दिया, पहले से मालूम होता तो मैं कल जाने का इरादा ही क्यों करता? रामेश्वरी, तो इसमें लाचारी की कौन सी बात है, कल ना सही, दो चार दिन बाद सही। कुंवर साहब की पत्नी सुशीला देवी बोली, हाँ और क्या, दो चार दिन बाद ही जाना। क्या साइट टली है? कुंवर, आह, छोटे साहब से वादा कर चुका हूँ, वो रात ही को मुझे लेने आएंगे, आखिर वो अपने दिल में क्या कहेंगे? रामेश्वरी, ऐसे वादे हुआ ही करते हैं, छोटे साहब के हाथ कुछ बिक तो नहीं गए हो? कुंवर, मैं क्या कहूँ, कितना मजबूर हूँ, बहुत लज्जित होना पड़ेगा। रामेश्वरी, तो गोया जो कुछ है वो छोटे साहब ही हैं, मैं कुछ नहीं? कुंवर, आखिर साहब से क्या कहूँ, कौन बहाना करूं? रामेश्वरी, कह दो कि हमारे भतीजे का मुंडन है, हम एक सप्ताह तक नहीं चल सकते, बस छुट्टी हुई। कुंवर, कितना आसान कर दिया आपने इस समस्या को, ऐसा हो सकता है कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहूंगा। सुशीला, क्यों, हो सकने को क्या हुआ, तुम उनके गुलाम तो नहीं हो? कुंवर, तुम लोग बाहर तो निकलती बैठती नहीं हो, तुम्हें क्या मालूम कि अंग्रेजों के विचार कैसे होते हैं? रामेश्वरी, अरे भगवान, उनके कोई लड़का बाला है या निगोड़ा नाठा है, त्योहार और व्यवहार हिंदू मुसलमान सबके यहां होते हैं। कुंवर, भाई हमसे कुछ करते धरते नहीं बनता। रामेश्वरी, हमने कह दिया हम जाने ना देंगे, अगर तुम चले गए तो मुझे बड़ा रंज होगा, तुम्ही लोगों से तो महफिल की शोभा होगी, और अपना कौन बैठा हुआ है? कुंवर, अब तो साहब को लिख भेजने का मौका भी नहीं है, वो दफ्तर चले गए होंगे, मेरा सब असबाब बन चुका है, नौकरों को पेशगी रुपया दे चुका कि चलने की तैयारी करें, अब कैसे रुक सकता हूँ? रामेश्वरी, कुछ भी हो जाने ना पाओगे। सुशीला, दो चार दिन बाद जाने में ऐसी कौन सी बड़ी हानि हुई जाती है, वहां कौन लड्डू धरे हुए हैं? कुंवर साहब बड़े धर्म संकट में पड़े, अगर नहीं जाते तो छोटे साहब से झूठे पड़ते हैं, वो अपने दिल में कहेंगे अच्छे बेहूदे आदमी के साथ पाला पड़ा, अगर जाते हैं तो स्त्री से बिगाड़ होती है, साली मुंह फुलाती है, इसी चक्कर में पड़े हुए बाहर आए तो मियां वाजिद बोले, हुजूर इस वक्त कुछ उदास मालूम होते हैं। व्यास, मुद्रा तेजहीन हो गई है। कुंवर, भाई कुछ ना पूछो, बड़े संकट में हूं। वाजिद, क्या हुआ हुजूर, कुछ फरमाए तो। कुंवर, ये भी एक विचित्र ही देश है। व्यास, धर्मावतार, प्राचीन काल से ये ऋषियों की तपोभूमि है। लाला, क्या कहना है, संसार में ऐसा देश दूसरा नहीं। कुंवर, जी हाँ, आप जैसे गौखे और किस देश में होंगे, बुद्धि तो हम लोगों को छू भी नहीं गई है। वाजिद, हुजूर अक्ल के पीछे तो हम लोग लठ लिए फिरते हैं। व्यास, धर्मावतार कुछ कहते नहीं बनता, बड़ी ही दशा है। कुंवर, नैनीताल जाने को तैयार था,
अब बड़ी साली कहती हैं कि मेरे बच्चे का मुंडन है, मैं ना जाने दूंगी, चले जाओगे तो मुझे रंज होगा। बतलाइए अब क्या करूं, ऐसी मूर्खता और कहां देखने में आएगी। पूछो मुंडन नाई करेगा, नाच तमाशा देखने वालों की शहर में कमी नहीं, एक मैं ना होऊंगा ना सही, मगर उनको कौन समझाए। व्यास, दीन बंधु नारी हट तो लोक प्रसिद्ध ही है। कुंवर, अब ये सोचिए कि छोटे साहब से क्या बहाना किया जाएगा। वाजिद, बड़ा नाजुक मामला पड़ा हुजूर। लाला, हाकिम का नाराज हो जाना बुरा है। वाजिद, हाकिम मिट्टी का भी हो फिर भी हाकिम ही है। कुंवर, मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गया। लाला, हुजूर अब बाहर न बैठे, मेरी तो यही सलाह है, जो कुछ सिर पर पड़ेगी हम ओढ़ लेंगे। वाजिद, अजी पसीने की जगह खून गिरा देंगे, नमक खाया है कि दिल लगी है। लाला, हाँ मुझे भी यही मुनासिब मालूम होता है, आप लोग कह दीजिए, बीमार हो गए हैं। अभी यही बातें हो रही थी कि खिदमतगार ने आकर हांफते हुए कहा, सरकार कोई आया है, कौन सरकार का बुलावत है। कुंवर, कौन है पूछा नहीं। खिदमतगार, कोई रंगरेज है सरकार, लाल लाल मुंह है, घोड़ा पर सवार है। कुंवर, कहीं छोटे साहब तो नहीं। भाई मैं तो भीतर जाता हूँ, अब आबरू तुम्हारे हाथ में है। कुंवर साहब ने तो भीतर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। वाजिद अली ने खिड़की से झांक कर देखा तो छोटे साहब खड़े थे, हाथ पांव फूल गए। अब साहब के सामने कौन जाए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, एक दूसरे को ठेल रहा है। लाला, बढ़ जाओ वाजिद अली, देखो क्या कहते हैं। वाजिद, आप ही क्यों नहीं चले जाते। लाला, आदमी ही तो है वो भी, कोई खा तो नहीं जाएगा। वाजिद, तो चले क्यों नहीं जाते। काटन साहब दो तीन मिनट खड़े रहे, अब यहाँ से कोई ना निकला तो बिगड़ कर बोले, यहाँ कौन आदमी है, कुंवर साहब से बोलो काटन साहब खड़ा है। मियाँ वाजिद बौखलाए हुए आगे बढ़े और हाथ बांध कर बोले, खुदावन, कुंवर साहब ने आज बहुत देर से खाना खाया, तबीयत कुछ भारी हो गई है, इस वक्त आराम में है, बाहर नहीं आ सकते। कॉटन, ओ तुम ये क्या बोलता है, वो तो हमारे साथ नैनीताल जाने वाला था, उसने हमको खत लिखा था। वाजिद, हाँ हुजूर, जाने वाले तो थे पर बीमार हो गए। कॉटन, बहुत रंज हुआ। वाजिद, हुजूर इत्तफाक है। कॉटन, हमको बहुत अफसोस है, कौन साहब से जाकर बोलो हम उनको देखना मांगता है। वाजिद, हुजूर बाहर नहीं आ सकते। कॉटन, कुछ परवाह नहीं, हम अंदर जाके देखेगा। कुंवर साहब दरवाजे से चिमटे हुए कॉटन साहब की बातें सुन रहे थे, नीचे की सांस नीचे थी ऊपर की ऊपर। कॉटन साहब को घोड़े से उतरकर दरवाजे की तरफ आते देखा तो गिरते पड़ते दौड़े और सुशीला से बोले, दुष्ट मुझे देखने घर में आ रहा है, मैं चारपाई पर लेट जाता हूँ, चटपट लिहाफ निकालो और मुझे उड़ा दो, चार पांच शीशियां लाकर इस गोल मेज पर रखवा दो। इतने में वाजिद अली ने द्वार खटखटाकर कहा, महरी दरवाजा खोल दो, साहब बहादुर कुंवर साहब को देखना चाहते हैं। सुशीला ने लिहाफ मांगा पर गर्मी के दिन थे, जोड़े के कपड़े संदूकों में बंद पड़े थे। चटपट संदूक खोलकर दो तीन मोटे मोटे लिहाफ निकालकर कुंवर साहब को ओढ़ा दिए गए, फिर अलमारी से कई शीशियां और कई बोतल निकालकर मेज पर चुन दिए गए और महरी से कहा, जाकर किवाड़ खोल दो, मैं ऊपर चली जाती हूँ। कॉटन साहब ज्यों ही कमरे में पहुंचे कुंवर साहब ने लिहाफ से मुंह निकाल लिया और कराहते हुए बोले, बड़ा कष्ट है हुजूर, सारा शरीर फूका जाता है। कॉटन, आप दोपहर तक तो अच्छा था, खान साहब हमसे कहता था कि आप तैयार है, कहाँ दर्द है। कुंवर, हुजूर पेट में बहुत दर्द है, बस यही मालूम होता है कि दम निकल जाएगा। कॉटन, हम जाकर सिविल सर्जन को भेजता है, वो पेट का दर्द अभी अच्छा कर देगा, आप घबराए नहीं, सिविल सर्जन हमारा दोस्त है। कॉटन चला गया तो कुंवर साहब फिर आकर बैठे, रोजा बख्शाने गए थे, नमाज गले पड़ी। अब ये फिक्र हुई कि सिविल सर्जन को कैसे टाला जाए। कुंवर, भाई ये तो नई बला गले आन पड़ी। वाजिद, कोई जाकर खां साहब को बुला लाओ, कहना अभी चलिए, ऐसा ना हो कि वो देर करे और सिविल सर्जन यहाँ सिर पर सवार हो जाए। लाला, सिविल सर्जन की फीस बहुत होगी। कुंवर, अजी तुम्हें फीस की पड़ी है, यहाँ जान आफत में है। अगर 100-200 लेकर गला छूट जाए तो अपने को भाग्यवान समझो। वाजिद अली ने फिटन तैयार कराई और खां साहब के घर पहुंचे। देखा तो वो असबाब बंधवा रहे थे। उनसे सारा किस्सा बयान किया और कहा, अभी चलिए, आपको बुलाया है। खां, मामला बहुत टेढ़ा है, बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ेगी। कसम खुदा की तुम सबके सब गर्दन मार देने के लायक हो। जरा सी देर के लिए मैं टल किया गया, सारा खेल ही बिगाड़ दिया। वाजिद, खां साहब हमसे तो उड़िए नहीं। कुंवर साहब बौखलाए हुए हैं, 200-400 का वारा न्यारा है, चलकर सिविल सर्जन को मना कर दीजिए। खां, चलो शायद कोई तरकीब सूझ जाए। दोनों आदमी सिविल सर्जन की तरफ चले। वहां मालूम हुआ कि साहब कुंवर साहब के मकान पर गए हैं। फौरन फिटन घुमा दी और कुंवर साहब की कोठी पर पहुंचे। देखा तो सर्जन साहब एनिमा लिए हुए कुंवर साहब की चारपाई के सामने बैठे हुए हैं। खान, मैं तो हुजूर के बंगले से चला आ रहा हूँ, कुंवर साहब का क्या हाल है?
डॉक्टर, पेट में दर्द है, अभी पिचकारी लगाने से अच्छा हो जाएगा।
कुंवर, हुजूर अब दर्द बिल्कुल नहीं है, मुझे कभी कभी ये मर्ज हो जाता है और आप ही आप अच्छा हो जाता है।
डॉक्टर, ओह आप डरते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, आप एक मिनट में अच्छे हो जाएंगे।
कुंवर, हुजूर मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, अब कोई शिकायत नहीं है।
डॉक्टर, डरने की कोई बात नहीं, ये सब आदमी यहाँ से हट जाएं, हम एक मिनट में अच्छा कर देंगे।
खां साहब ने डॉक्टर से कान में कहा, हुजूर अपनी रात की डबल फीस और गाड़ी का किराया लेकर चले जाएं, इन रईसों के फेर में ना पड़े, ये लोग 12 महीने इसी तरह बीमार रहते हैं, एक हफ्ते तक आकर देख लिया कीजिए। डॉक्टर की समझ में ये बात आ गई, कल फिर आने का वादा करके चले गए। लोगों के सर से बला टली, खां साहब की कारगुजारी की तारीफ होने लगी। कुंवर, खां साहब आप बड़े वक्त पर आए, जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। हाँ जनाब, 200 चटाने पड़े, कहता था छोटे साहब का हुक्म है, मैं बिला पिचकारी लगाए ना जाऊंगा। अंग्रेजों का हाल तो आप जानते हैं, बात के पक्के होते हैं। कुंवर, ये भी कह दिया ना कि छोटे साहब को मेरी बीमारी की इत्तला कर दें और कह दें वो सफर के लायक नहीं है।
हाँ
हाँ साहब, और रुपए दिए किस लिए, क्या मेरा कोई रिश्तेदार था? मगर छोटे साहब को होगी बड़ी तकलीफ, बेचारे ने आपके बंगले के आसरे पर होटल का इंतजाम भी ना किया, मामला बड़ा बेढप हुआ।
कुंवर,
तो भाई मैं क्या करता, आप ही सोचिए।
हाँ
ये चाल उल्टी पड़ी, जिस वक्त कॉटन साहब यहाँ आए थे आपको उनसे मिलना चाहिए था, साफ कह देते, आज एक सख्त जरूरत से रुकना पड़ा, लेकिन खैर मैं साहब के साथ रहूंगा, कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा।
कुंवर,
क्या अभी आप जाने का इरादा ही कर रहे हैं?
हलफ से कहता हूँ मैं आपको ना जाने दूंगा, यहाँ ना जाने कैसी पड़े।
मियाँ वाजिद, देखो आपको घर कहला दो, 12 ना बच जाए।
हाँ
आप अपने साथ मुझे भी डुबाना चाहते हैं?
छोटे साहब आपसे नाराज भी हो जाएं तो क्या कर लेंगे,
लेकिन मुझसे नाराज हो गए तो खराब ही कर डालेंगे।
कुंवर, जब तक हम जिंदा हैं भाई साहब आपको कोई तिरछी नजर से नहीं देख सकता, जाकर छोटे साहब से कहिए कुंवर साहब की हालत अच्छी नहीं है, मैं अब नहीं आ सकता, इसमें मेरी तरफ से भी उनका दिल साफ हो जाएगा और आपकी दोस्ती देखकर आपकी और इज्जत करने लगेगा।
हाँ अब वो इज्जत करें या ना करें, जब आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं भी इतना बेमुरव्वत नहीं हूँ कि आपको छोड़कर चला जाऊं, ये तो हो ही नहीं सकता, जरा देर के लिए घर चला गया उसका तो इतना तावान देना पड़ा, नैनीताल चला जाऊं तो शायद कोई आपको उठाकर ही ले जाए।
कुंवर, मजे से 2-4 दिन जलसे देखेंगे, नैनीताल में ये मजे कहाँ मिलते।
व्यास जी, अब तो यूं नहीं बैठा जाता, देखिए आपके भंडार में कुछ है, 2-4 बोतलें निकालिए, कुछ रंग जमे,